हम सत्यार्थ प्रकाश इंग्लिश लाइट ऑफ ट्रूथ स्वामी दयानंद जी के लिखे हुए चैप्टर 7 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ईश्वर के अलग अलग चीजों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। ईश्वर के जो अलग अलग तरह के डायमेंशंस हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है। और जब ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक वो उसका काम कैसा है, किस तरह के काम करता है, पब्लिक में जो परसेप्शंस हैं, अलग अलग परसेप्शंस हैं, वो कितने सच हैं या कितने वैसे ही सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न शुरू हो रहा है, इज द जीव द इंडिविजुअल बीइंग मीन्स आत्मा और यू एंड मी ए फ्री एजेंट और डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन इसीलिए आता है, बहुत सारे लोगों तो मानते हैं कि भाई मैं आजाद हूं, कुछ भी करूं, और वही लोग फिर जब मंदिर में आते हैं कहते हैं सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ। जब ऑफिस में होते हैं, घर में होते हैं, बाजार में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, सब उनकी इच्छा से होती है। और जब धार्मिक स्थान पर आ जाते हैं बोलते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। जितनी बुराइयां हो रही है दुनिया में सब भगवान की इच्छा से हो रही है। आप किसी एक को पूछ लीजिए, सो कॉल्ड रिलीजियस आदमी को, कहीं कुछ भी बुराइयां हो सबसे पहली गाली भगवान को जाता है कि भगवान क्यों ऐसा सब करता है। किसी सो कॉल्ड रिलीजियस को पूछे जो कुछ अच्छा हो रहा है वो कभी क्रेडिट दिया है भगवान को? नहीं दिया है। मतलब हमें लगता है, तो ये जो परसेप्शन हमने खुद बनाया है या हमने बनवाया है या दूसरों से लिया है वो कितना सच है? मेरे लाइफ में जो कुछ घटता है वो सिर्फ मेरे कारण घटता है कि वो भगवान कराता है? मैं अगर झूठा हूं वो भगवान ने मुझे झूठा करा है कि मैं कुछ खुद झूठा हूं? जो कुछ भी है मेरे जीवन में, मेरी कितनी उसमें कंट्रीब्यूशन है, कितना ईश्वर का है? मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें कितनी मेरी इंडिपेंडेंसी है, कितनी डिपेंडेंसी है? ईश्वर के हिसाब से, समाज के हिसाब से नहीं। वैसे तो आप लाइफ भर डिपेंडेंट होते हैं, आप चाहें न चाहें, माँ बाप बचपन में आपको कंट्रोल करते हैं, स्कूल में टीचर कंट्रोल करते हैं, दुनिया में आपके स्टेट, आपके लॉज, रूल्स कंट्रोल करते हैं, वो अलग मैटर है। यहां हम चर्चा करेंगे ईश्वर के बारे में कि उसका कितना कंट्रोल आपके लाइफ में रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आंसर, इट इज अ फ्री एजेंट इन द मैटर ऑफ परफॉर्मिंग डीड्स। हर जीव, हर प्राणी, एवरी बींग इज फ्री टू परफॉर्म व्हाट एवर ही वांट्स, ही और शी वांट्स टू डू। काम करने में हम सब स्वतंत्र हैं, जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें कर सकते हैं। ईश्वर की व्यवस्था में, बट इट इज सब्जेक्टेड टू द लॉज ऑफ गॉड इन द मैटर ऑफ रीपिंग द फ्रूट्स देयरऑफ। पर जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं, ये नहीं होता है। फल देने, फल खुद अपने आप फल लेने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कर्म फलों के मामले में हम डिपेंडेंट हैं ईश्वर के ऊपर। रियल लाइफ में भी आप कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो कुछ चाह कर करते हैं वही आपको मिलता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं कि हम प्रेसिडेंट तक पहुंचे, प्रेसिडेंट बने। दो विचारी तो बन सकते हैं पूरे 100 साल में, 8-10 लोग की कितने ही लोग बनते हैं, 10-20 लोग बन पाते हैं। जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं शुरू शुरू में तो इसीलिए ज्वाइन करते हैं खुद कमाई हो जाए, 5-7 साल के बाद सपने देखते हैं मैं ही बनू इसका सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, थोड़े ही सभी बनते हैं। आप भी हार्डवर्क करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ सपना देखते हैं और कुछ करते नहीं है, उनको अलग कर लीजिए, एक्सक्लूड कर लीजिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सपना देखते हैं और मेहनत भी करते हैं, तो रिजल्ट वो नहीं मिलता जो एक्सपेक्ट करते हैं। इसका मतलब रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, पर काम हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं। आपकी सोच पर किसी का कंट्रोल नहीं है जी, किसी का भी नहीं। आपके जब आप छोटे थे आपके पेरेंट्स आपके बाहरी एक्टिविटीज पर कंट्रोल करते थे, पर अंदर जब आप उनको गुस्सा उतारते थे, गालियां देते थे, थोड़े ही माँ बाप को कंट्रोल करते हैं ना। तो दुनिया भर में आप कहीं भी जाएं, कोई भी रूल रेगुलेशन आपकी सोच को कंट्रोल नहीं करता, वो आप ही होते हैं जो आप अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं। आपकी स्टेट ऑफ माइंड है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। दुनिया में कोई भी शक्ति, विजिबल इनविजिबल ताकत आपकी सोच को आपकी इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आप ही कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं। इवन आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं, अगर आप नहीं करते इसीलिए नहीं कि ईश्वर कराता है, इसीलिए आपकी सोसाइटी में रूल्स है, फैमिली में रूल्स है, आप जिस देश में रहते हैं वहां रूल्स रेगुलेशन है, इसीलिए नहीं करते हैं। कभी आपने फील नहीं किया होगा कि आप किसी को चांटा मार रहे जा रहे थे और हाथ को किसी ने इनविजिबल ताकत ने पकड़ लिया। अगर ऐसा कभी फील हुआ है वो भी आपका इल्यूशन है, फिर आप कहेंगे किसी भूत ने पकड़ लिया। भूत भी एक इल्यूशन होता है। अर्थ है कि हम जो चाहें उसको करने में इंडिपेंडेंट हैं, सोचने में करने में ईश्वर की व्यवस्था में, पर फल उतना ही मिलता है जितना आपका एक्शन डिजर्व करता है। वो गीता में आप पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब यही है, आप कर्म करने में अधिकारी है। यू हैव ऑल द राइट्स टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, नो वन विल अपोज यू, इवन गॉड। He has no role in your actions. Remember. पर मा फलेषु कदाचन, पर जो उसका रिजल्ट मिलना है उसमें आपका कोई कोई रोल होता नहीं है, कभी नहीं होता है, दिखता भी नहीं है। हम सब कुछ अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, अलग अलग कारण से मिलने ना मिलने का। गीता में 18th चैप्टर में कहता है देयर आर फाइव फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस, उसमें गॉड कहीं नहीं है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवमत्र अस्ति पंचमम। जब आप कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर कर रहे हैं, उसके लोकेशन क्या है, टाइम एंड प्लेस, इस पर डिपेंड करता है कि आपका काम अच्छा होगा या बुरा होगा रिजल्ट। अच्छा काम गलत टाइम पर गलत जगह पर करेंगे तो गलत रिजल्ट भी देता है। भूखे आदमी को आप शांति पाठ सुनाएंगे तो थप्पड़ मारेगा, इसका अर्थ नहीं कि शांति पाठ करना बुरी चीज है, पर गलत जगह पर गलत टाइम पर शांति पाठ करना शुरू कर दिया, फिर ये मत कोशिए कि शांति पाठ बुरी चीज है। आपने लोकेशन गलत चुना था इसीलिए शांति पाठ पर थप्पड़ पड़ी। ये कभी कभी बच्चे जो मां बाप पर गुस्सा उतारते हैं उसका कारण है, मां बाप बड़ी अच्छी अच्छी बातें बड़े गलत टाइम पर गलत जगह पर बोलते हैं ज्यादातर मां बाप। चौबीस घंटे तो माइक बजता है पढ़ाई के बारे में, तो हमेशा तो एक जैसा मूड बच्चे का नहीं होता है ना। टीवी ज्यादा देखा तो पढ़ाई नहीं करता है, खेलने में गड़बड़ी की तो पढ़ाई नहीं करता है, कोई और गलती हुई तो भी पढ़ाई नहीं करते हो, तो इसीलिए वो उसको पता है कि ये तो माइक बजता रहता है, फिर वो इग्नोर करने लगता है। इसीलिए इग्नोर नहीं करता है कि आप बुरी बात बोल रहे हो या आपकी बात में कोई दम नहीं है, इसीलिए कि आप गलत जगह पर गलत टाइम पर अच्छी बात को रिपीट करते रहते हो। अधिष्ठानम तथा कर्ता, दूसरा फैक्टर होता है कर्तृत्व, मेरी जो एबिलिटी है वो कितना है, जिस काम को मैं कर रहा हूं मेरी ट्रेनिंग कितनी है, मेरी एबिलिटी कितनी है, उस पर मेरा कर्म का रिजल्ट डिपेंड करता है। यद्यपि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बनूं, कुछ पाऊं और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, पर अगर मेरी उसमें कोई करने की एबिलिटी नहीं है, कोई क्षमता नहीं है या मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है तो काम बिगड़ता है। इसीलिए नहीं कि ईश्वर बिगाड़ता है, वो दूसरा फैक्टर है कि आप उस काम को करने में आप एबल नहीं है और जबरदस्ती आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते, करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स, कहीं हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में ऊंच नीच हो, अच्छा बुरा हो, खराब हो, कुछ हो। कभी कभी आप देखते हैं ना, आपकी गाड़ी में, आपके टीवी में, आपके कंप्यूटर में छोटी छोटी चीजें कुछ खराब हो जाती है और आप महीनों 15 दिन तक, एक हफ्ते तक ट्राई करते रहते हैं, इधर ट्राई करते हैं, उधर ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर आप किसी को दिखाते हैं, दो चार लोग भी देखते हैं, बड़े दुनिया भर के घंटों लग के आगे पीछे करते हैं, कुछ नहीं होता है। मेरे ये लैपटॉप जो यूज कर रहा हूं वो 15-20 दिन तक पड़ा रहा, क्योंकि इसका कर्सर काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट कोशिश किया, नहीं हुआ। तो मैंने ये ब्रिज जी को दिखाया, आधे सेकेंड में ऐसे ऐसे से बोलिए सेंसर थोड़ा शायद गलत हो गया था, इसीलिए नहीं कर रहा था। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो अगर कहीं उसमें कोई फॉल्ट हो, गड़बड़ी हो, तो भी काम नहीं होता है। तो तीसरा फैक्टर है इंस्ट्रूमेंट है। चौथा फैक्टर है चेष्टाएं, जो हम एफोर्ट करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं उसमें कितने परसेंट। अगर 100% किसी चीज को अचीव करने के लिए आपको 100% की एफर्ट चाहिए, उसमें अगर आप 99 तक जाते हैं, 1% मिस कर जाते हैं, तो आपका काम नहीं बनता। आप कहेंगे, आप दोष देंगे दुनिया को कि देखो मैंने कितनी कोशिशें की, पर तब भी मुझे वो नहीं मिला। नहीं मिला हो सकता है आपकी कोशिशें अच्छी थी, 99% तक पहुंचा था, शायद और एक थोड़े से धक्के की जरूरत थी, वो नहीं हुआ तो आप नहीं हुए। और चौथा पांचवा होता है, जब आपके सारे फैक्टर्स अच्छे हो तो आपके पुराने जन्म, पुराने कर्मों का, जो आपने पहले से जो आपने कर रखा है उसका जो संस्कार है, जो इंप्रेशन है, वो आपको बीच में कहीं ऑब्स्टिकल बनता है, बाधा बनता है या अच्छा बनता है। आपके सारे फैक्टर गलत हो, आपके आपके अगर पास्ट एक्शंस बहुत पावरफुल हो जो आपने किया था, तो वो हैवी हो जाता है, वो डोमिनेट करने लगता है। या आपके सारे एक्टिविटीज अच्छे हो, सारे फैक्टर्स अच्छे हो, तो भी आपके बुरे जो पास्ट एक्शंस हैं उनके इंप्रेशन से हैवी हो, तो भी आपके काम बिगड़ता है। तो अगर जो कुछ मैं करता हूं उसमें मुझे पूरी आजादी है, पर जो रिजल्ट मिलता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उन फैक्टरों में कहीं ईश्वर का नाम गीता में नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा, पर हम हमेशा हमारे दुखों की परेशानियों का कारण ईश्वर पर तोप देते हैं। अब थोड़ा शास्त्रीय बात करते हैं, ये तो थोड़े एग्जाम्पल्स था। स्वतंत्र कर्ता, पाणिनि के अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण के सबसे मूर्धन्य ग्रंथ है, उसमें कर्ता का डेफिनेशन है। कर्ता मीन्स डूअर, उसका डेफिनेशन है, हु इज ए डूअर। तो उसका डेफिनेशन होता है, द डूअर इज ही हु इज ए फ्री एजेंट। जो फ्री नहीं है वो डूअर, कर्ता की नाउन उसके लिए यूज नहीं होता है। जब आपके घर में जब वो स्लेव होता है, कोई सर्वेंट होता है, वो जो कुछ करता है उसको कोई क्रेडिट नहीं जाता है, क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो उसके ऊपर कोई बॉस है, उसके ऊपर कोई मास्टर है। जो पहले अमेरिका में स्लेव सिस्टम था, वो 24-24 घंटे मेहनत करते थे, सारे काम तो उन्हीं से होता था, पर ना अच्छा ना बुरे का क्रेडिट उनको जाता था, सब मालिक को जाता है। इसलिए कर्ता मैं तब तक होता हूं जब जब मेरे अंदर वो स्वतंत्रता हो. बिकॉज ऑफ एवरी इंडिविजुअल बींग इज ए कर्ता इज ए डूअर. सो इन द गॉड सिस्टम एवरी वन इज फ्री. उसमें ईश्वर कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है. किसी की एक्टिविटीज में कभी भी ईश्वर का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है. टोटली यू आर फ्री व्हाट एवर यू वांट टू डू और नॉट टू डू. क्वेश्चन है हु डू यू कॉल फ्री. तो फिर आपके हिसाब से फ्री मतलब इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब क्या है. ही इज कॉल्ड ए फ्री एजेंट. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जीव हु हैज द बॉडी द प्राण एंड द वाइटल फोर्सेस सेंसेस इंद्रिया एंड द माइंड सबोर्डिनेट टू हिज विल. बट जिसके आप अगर ऑफिस में आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए और आप कैसे पता चलेगा कि आप फ्री हो आप इंडिपेंडेंट हो जब आपके साथ काम करने के लिए कुछ लोग दिया जाते हैं और आपको ये पूरी छूट होती है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका होगा फाइनल डिसीजन आपका होगा. तभी तो आप फील करते हैं कि मैं फ्री हूं इंडिपेंडेंट हूं. जब आप कितना भी सोचें विचारें कोई दूसरा आकर के उसको बदल देता है तो आप अपने आप फिर करते हैं कि भाई इसमें काम कर सकता हूं पर डिसीजन मेकिंग में मेरा कोई रोल नहीं होता है. तो फिर आप वो जो रिजल्ट होगा वो आपका नहीं जाएगा. जो डिसीजन लेता है उसी के पास क्रेडिट जाता है. आपके बारे में सोचिएगा हमारे बारे में सोचिए. जब हम कुछ करते हैं और हमारे करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बॉस ने हमें दिया है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली दिया है. हम उसको कैसा भी यूज करें हमारा माइंड है हमारी मर्जी. हम उसमें किसी को गालियां दें किसी को प्यार करें किसी के बारे में अच्छा सोचें बुरा सोचें कुछ भी सोचे कोई आपको रोक सकता है. किसी ने रोका आपके माइंड में आप क्या सोचते. आप यहां बैठे बैठे मेरे बारे में आप क्या सोचते मेरा कोई कंट्रोल है. किसी का भी नहीं है. आप पूरी तरह फ्री हैं आपके माइंड के बारे में आप इसको कैसा यूज करेंगे. आप पूरी तरह फ्री हैं अपने इंटेलेक्ट को यूज करने के बारे में. बहुत सारे लोग अपने इंटेलेक्ट को हर तरह यूज करते. बहुत सारे लोग अपने इंटेलेक्ट को सिर्फ प्रोफेशन में यूज करते. सिर्फ प्रोफेशन का मतलब बाकी जगह ताला लगा के रखते बिल्कुल ब्लाइंड बिहेव करते. आपको दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे इंजीनियर बनेंगे मिलेंगे डॉक्टर्स मिलेंगे जो हर तरह रीजनिंग ढूंढते इंटेलेक्ट यूज करते. जब अपने बाबा गुरु के पास आते हैं बिल्कुल इतना अंधा भाव से आते हैं अंधी भक्ति से. वो अगर कहे तेरे बच्चे को मुझे दे दो तो भी वो समर्पण सौंप देते. मोस्ट ऑफ एजुकेटेड पीपुल डोंट यूज देयर इंटेलेक्ट व्हेन रिलीजन कम्स स्पिरिचुअलिटी कम्स. बस ये गुरुवाक्य प्रमाणम. आपकी मर्जी है. थोड़े किसी ने आपको रोक रखा है. ईश्वर ने बुद्धि दी आप उसको पार्शियली यूज करते हैं पूरा यूज करते हैं बिल्कुल यूज नहीं करते ये आप पर है. और उससे आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी कैरेक्टर डिफाइन होता है. आपकी सेंसेस है कान है आंख है नाक है. अब सुनना चाहो सुनो ना सुनना है ना चाहो. बहुत सारे लोग यहां बैठते उन्हीं कान आंख नाकों के साथ जो ईश्वर ने मुझे दिया आपको दिया सबको दिया. वो आंख इधर लगाते वो कान इधर लगाते आंख सेलफोन पर लगाते. अभी भी दो चार मिल जाएंगे ढूंढो तो सत्संग में बैठे मिल जाएंगे. उनकी मर्जी किसने रोका. ईश्वर ने तो नहीं रोका आपको. आप अपनी आंख को कहां यूज करते हो, कान को कहां यूज करते हो, मुंह को कहां यूज करते हो, ईश्वर ने कभी नहीं रोका, दे दिया, बस आपकी मर्जी। क्योंकि इसका मतलब है आपके पास जो कुछ है, इंटेलेक्ट है, माइंड है, सेंसेस है, बॉडी पार्ट्स है, वो सारे आपके कंट्रोल में है। इवन आपके स्पाउस भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स भी कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो लोग शिकायत करें जिनके इंटेलेक्ट कम है, जिनका माइंड नहीं है, जिनकी सेंसेस में गड़बड़ियां है, वो करो, वो अलग बात है, इट्स अ डिफरेंट मैटर। क्योंकि ये सब कुछ हमारे पास है और हमारे सबोर्डिनेट हैं, वो हमारे अधीन है, हमारी मर्जी से काम करते हैं, फिर हम कैसे डिपेंडेंट बने? वी आर फ्री। इफ द जीव द इंडिविजुअल बींग द आत्मा वी आर नॉट ए फ्री एजेंट, इट वुड नॉट रीप द फ्रूट्स ऑफ इट्स डीड्स गुड और बैड। क्योंकि हम फ्री हैं, इसीलिए जो कुछ हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उसका रिजल्ट हमें मिलता है। आज मिलता है, कल मिलता है, अच्छा हो बुरा हो हमें मिलता है। जैसे जस्ट एज सोल्जर्स एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ देयर कमांडर इन चीफ आर नॉट हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर इवन ऑन किलिंग मेनी ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। जो बैटल फील्ड में एक इंसान एज ए सोल्जर कमांडर इन चीफ के आर्डर को मानते हुए लड़ता है, वो सैकड़ों मारता है, एक मारता है, उसको उस समय दोष नहीं माना जाता। पर वही क्योंकि उस समय वो सबोर्डिनेट है, वो फ्री नहीं है। स्लेव अगर किसी को मारता है, एक सर्वेंट अगर किसी को मारता है अपने मालिक के कहने पर या ऑर्डर पालने पर, तो उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं करता। पर वही सोल्जर जब अपने गांव में जाता है, जब अपने होम टाउन में जाता है, जब वो ड्यूटी में नहीं होता, इवन अपने पड़ोसी को एक चांटा भी मारता है, तो भी वो दोषी होता है, वो क्रिमिनल होता है। क्यों? वहां वो फ्री है, वो अपनी चीजें यूज कर सकता है। इफ द जीवा डू एक्शंस एंड द सजेशंस ऑफ और अंडर कंपल्शन फ्रॉम गॉड, इट वुड नॉट बी अकाउंटेबल फॉर इट्स गुड और बैड डीड्स। इसी तरह अगर जीव परतंत्र होता, अगर आत्मा फ्री नहीं होता, डिपेंडेंट होता, जैसे कि आपके हमारे परसेप्शंस हैं, तो फिर सारे कर्मफल ईश्वरी भोगता, हम क्यों भोगे? पर बुरे लोग हमेशा यही बोलते हैं, हर बुरे काम के लिए बोलते हैं, भगवान ने कराया, मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया। महाभारत में दुर्योधन जब महाभारत की लड़ाई करीब करीब खत्म होने की कगार पर है, तो कृष्ण उसके पास पहुंचते हैं, कहते अभी भी टाइम है, मान जाओ उनको बस 5 गांव वापस कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। अभी भी वो चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, राज्य देने की जरूरत नहीं है, उनका जो राइट है उनको दे दो। बोले नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, इतने ज्ञानी हो दुर्योधन, तुम एक अच्छे खानदान को बिलोंग करते हो, कुरु वंश को, इतने पढ़े लिखे ज्ञानी हो, क्योंकि सब एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, पांडव हो, कौरव हो, आप इतना इंटेलिजेंट हो, क्यों ये सब कर रहे हो? तुझे पता है तेरी लालच के कारण लाखों लोग मारे जा चुके हैं और मरने वाले हैं, ये सब क्यों बुरा काम करते हो? तो दुर्योधन बोलता है, हमारे में से बहुतों की तरह, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, क्या करूं, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है, मेरी कोई टेंडेंसी नहीं बन रही है उसको फॉलो करने के लिए। जानाम न धर्मम न च मे निवृत्ति, मुझे ये भी पता है क्या अधर्म है क्या बुरा है, और क्या करूं, मुझे उसमें से अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, पर ये सब मेरा कसूर नहीं है। तो या ऋषिकेश हृदय स्थिति न यथा नियुक्त होस्मि तथा करोमि, वो भगवान दिल में बैठ करके मुझे जहां ले जाता है मैं चलता हूं, मैं क्या करूं, सारा कसूर उसी का है। ऐसा नहीं कि ऐसे कि दुर्योधन ने बोला है, हमारे आप में से लाखों करोड़ों अरबों लोग यही तो बोलते हैं, लैंग्वेज अलग होता है पर उस लैंग्वेज को ठीक से समझो, भाव यही होता है कि जो कुछ मेरे से बुरा हो रहा है मेरे साथ, या मेरे द्वारा हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है, मतलब उसका भाव यही है। दुख में बोले, प्यार से बोले, चिल्लाकर बोले, हंस के बोले, उसका भाव यही है कि सब वो ईश्वर कराता है। पर ऐसा स्टेटमेंट दुर्योधन का हुआ करता था, मतलब आप समझ सकते हैं आजकल कितने दुर्योधन बढ़ चुके हैं। अरुत प्राइड कि भाई हम बड़े रिलीजियस हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है। सो अगर ईश्वर ही कराता तो सारे बुरे अच्छे कर्मफल ईश्वर का होता, हमारे हम तो स्लेव हैं, हमें फिर कुछ नहीं होता। बीइंग द प्रॉम्प्टर ओनली गॉड डिजर्व द रिजल्ट्स, ही अलोन वुड सफर पेन और एंजॉय हैप्पीनेस, क्योंकि उसने प्रेरणा दी है लाइक ए कमांडर इन चीफ, तो पकड़ा जाएगा तो वही जेल जाएगा, उसी को सजा मिलेगी, तो फिर आम आदमी को क्यों मिलेगा। जस्ट एट दैट मैन एलोन हु मर्डर्स अनादर विथ सम काइंड ऑफ वेपन इज अरेस्टेड एंड पनिश्ड फॉर द क्राइम एंड नॉट द वेपन। जब आप किसी अस्त्र से किसी को मारते हैं तो अस्त्र पर केस नहीं चलता है, आप पर चलता है, मारा तो आपने नहीं, छुरी ने मारा है, वो कटा उसके शरीर में जो घाव हुआ इस छुरी से हुआ, गोली से हुआ, बंदूक से हुआ, पर बंदूक और छुरी क्योंकि अपने कंट्रोल में नहीं होते, छुरी और बंदूक अपने आप नहीं चलते, उनका ना माइंड है ना इंटेलेक्ट है ना वो अपने आप कुछ कर सकते, इसीलिए उनके साथ कुछ नहीं आप कर सकते। Likewise, the soul subordinate to the will of God could not justly be made to reap the fruits of their deeds, sinful or virtuous, suffering pain and misery for its sins. इसी तरह अगर सब कुछ जैसा कि हम बोलते हैं कि भाई हम कठपुतलियां हैं सब वो करता है, तो फिर कठपुतली को थोड़ा ही अच्छा बुरा कुछ थोड़े ही मिलता है, मजे तो आप लेते हो, कठपुतली ने कब मजा लिया बताइए। जब आप बोलते हो हम सब कठपुतली है ईश्वर के, किस कठपुतली ने आपकी तरह मजे लिया है लाइफ में, नहीं लिया, पर हमेशा हम बोलते हैं हम कठपुतली की तरह है। आप अपने नेचर की कठपुतली हैं, आप अपने माइंड की कठपुतली बन चुके हैं, आप अपने एक्सक्यूजेस की कठपुतली बने हैं, ईश्वर के नहीं है। ईश्वर ने तो आपको भला चंगा प्योर इंडिपेंडेंट करके बनाया था, अगर नहीं होता तो फिर सारा दोष सारा पाप पुण्य ईश्वर को जाता। देयरफोर द जीवा इज फ्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी, इसीलिए काम करने के लिए जितना उसमें सामर्थ्य है, हां उसके अंदर कितना सामर्थ्य है वो उसके हाथ में नहीं है, उसका इंटेलेक्ट कितना कम है वो उसके हाथ में नहीं है, पर इंटेलेक्ट को यूज कहां करना है वो उसके हाथ में है। बट वंस इट हैज कमिटेड एन एक्ट, जैसा भी कर्म किया, इट बिकम्स सब्जेक्टेड टू द ऑपरेशन ऑफ द लॉज ऑफ गॉड। जब हम काम करते हैं उस काम का रिजल्ट क्या होगा वो सिस्टम पर डिपेंड करता है, वो सिस्टम विच इज क्रिएटेड विच इज मेड बाय गॉड, वो आप लॉ ऑफ कर्मा कहिए, यूनिवर्सल लॉ कहिए, लॉ ऑफ नेचर कहिए, जो भी आप कहिए, जो कि ईश्वर की व्यवस्था है। वंश आप अपना काम कर दिया, वो काम का रिजल्ट आप तक कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, वो बाकी चीजें डिसाइड करते हैं। it becomes subjected to the operation of the laws of God and thereby reaps the consequences of its act. दूसरी भाषा में कहें, the jiva means atma, means हम सब, is a free agent is so far as the performance of deeds is concerned. जब तक काम करने की बात है तब तक हम फ्री हैं. It has to submit to divine laws in the matter of suffering pain and misery for its evil deeds. हाँ, अच्छा या बुरा कर्म जो कुछ हम चाहे कर सकते हैं, पर उसका रिजल्ट भोगने के लिए फिर हम इंडिपेंडेंट नहीं है. वो जैसे आप किसी को मार सकते हो, किसी को बचा सकते हो, ये आप अपनी मर्जी से यहां भी कर सकते हो, पर उसके बदले आप आपके साथ क्या होगा वो आप डिसाइड नहीं करोगे, तो जज डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो सरकार डिसाइड करेगा. आप जब पेपर देने जाते हैं, एग्जाम लिखने जाते हैं, आपकी मर्जी, आप पूरा का पूरा जो पेपर है आप खाली छोड़ के आइए, लिख करके आइए, गलत लिख कर आइए, सही लिख करके आइए, आपकी मर्जी, कुछ भी करिए, कोई नहीं रोकने टोकने वाला. पर एक रिजल्ट आपको वो मिलेगा जो आप चाहोगे नहीं, जो चेक करने वाला होगा, जो चेकर होगा. मतलब हमेशा रिजल्ट दूसरों के हाथ में होता है. दूसरों के हाथ मतलब केवल ईश्वर नहीं, कोई भी, आपके टीचर हो सकता है, पेरेंट्स होते हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, ट्रैफिक पुलिस हो सकता है, कोर्ट हो सकता है, लॉज हो सकता है, ईश्वर भी हो सकते हैं, नेचर भी हो सकता है. देखिए, हम नेचर को 400-500 साल में, जब से मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ, 400-500 साल में, तब से इस नेचर में इतना जल्दी डिक्लाइनेशन आने लगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, समुद्र का पानी बढ़ने लगा, क्लाइमेट बदलने लगा, पेड़ पौधे खत्म होने लगे, प्लास्टिक और पता नहीं कूड़े कचरे बढ़ने लगे. ये हमारी, हम कर सकते हैं, वी आर इंडिपेंडेंट टू डू इट, वी आर फ्री टू डू इट, और हमने किया भी. पर जो रिजल्ट आ रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. क्लाइमेट्स बदलने लगे, नई नई बीमारियां बढ़ने लगी, कैंसर वगैरह से लेकर बहुत सारी चीजें, दुनिया के बहुत सारे आइलैंड समुद्र में डूबने के कगार पर है, क्योंकि समुद्र का पानी बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं. नेचर रिवोल्ट कर रहा है. इसमें ईश्वर का रोल नहीं है, इसमें भी ईश्वर का रोल नहीं है जी. वो एक सिस्टम है. जब आप छेड़ते हैं, आपकी गाड़ी जैसी बनी है वैसी ही आप चलाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा उलटपटांग करेंगे तो गाड़ी बीच रास्ते में कुछ भी आपको धोखा देगा, उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है. वो सिस्टम के खिलाफ जब जाते हैं तो आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है. आप फ्री हैं, आप इस नेचर को तबाह करने के लिए, यू आर फ्री टू डिस्ट्रॉय और सेव दिस नेचर, पर उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं होता है. प्रश्न, इफ गॉड एंड नॉट हैड नॉट क्रिएटेड जीव, जैसे कि हम मानते हैं कि हम सबको भगवान ने बनाया है, एंड गिवन देम पावर टू डू एन एक्ट, दे कुड हैव डन नथिंग. देयरफॉर इट फॉलोज दैट व्हाट एवर जीव डज इट डन सोली थ्रू डिवाइन इंपल्स. अगर ईश्वर ने हमें बनाया नहीं होता तो हम किसी काम के लायक नहीं होते, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है और इसीलिए ईश्वर ही सब कुछ है. और वो सब कुछ का मतलब है कि जो कुछ हम कर रहे हैं सब उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि उसने हमें बनाया है. ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है. आंसर, सोल्स और आत्माज वर नेवर क्रिएटेड. भूल जाइए कि ईश्वर ने बनाया है. कोई चीज बनता हो तभी तो कोई बनाए. आत्मा कभी बनती ही नहीं है, तो ईश्वर का सवाल ही कहां से आया आत्मा को बनाने में. संसार में तीन चीजें नित्य है, थ्री एंटिटीज आर इटर्नल, द सोल, द सेल्फ आत्मा, द सुप्रीम सोल, द परमात्मा गॉड, द क्रिएटर, द द सस्टेनर द डिस्ट्रॉयर ऑफ द होल यूनिवर्स एंड द थर्ड वन इज द नेचर प्रकृति द प्राइमोडियल नेचर ऑफ द वर्ल्ड. इस संसार का जो जो एलिमेंटरी पार्टिकल्स हैं जिसको हमारे दर्शन में प्रकृति कहते हैं, संसार को विकृति और ये संसार जहां से बना, विकृति मतलब मैनिफेस्टेशन. द होल ग्रॉस वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सटल पार्टिकल्स, उसको हमारे यहां प्रकृति कहते हैं. ये तीन चीजें नित्य है. नित्य का मतलब होता है, इटर्नल का मतलब होता है जो बनते नहीं है, वो ऑलरेडी है. वो बनते तभी ना जब ना हो. दे आर इटर्नल लाइक गॉड एंड द मैटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड प्रकृति द प्राइमोडियल प्राइमोडियल मैटर. तो फिर ईश्वर का हमारे लाइफ में क्या रोल है एज ए क्रिएटर? ही मेड योर बॉडी. द बॉडी एंड बॉडीली ऑर्गेन्स वर मेड बाय गॉड. ईश्वर ने जब कहते मुझे बनाया, मैं दो चीजों का बनावट हूं, एक आत्मा और एक शरीर. आत्मा तो अजर है, अमर है. आप गीता में कितने श्लोक पढ़ते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा भूय. पूरे सेकेंड चैप्टर में तो यही बताया कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है. ना इसको पानी डुबा सकता है, ना हवा उड़ा सकता है, ना आग जला सकता है. रोज पढ़ते गीता में. ये वैसे ही शरीर को बदलता है जैसे लोग कपड़े बदलते हैं. आत्मा तो नित्य है, अजन्मा है. आत्मा नित्य है, अजन्मा है, इसीलिए उसको बनाएगा कौन? तो आप इन योर एसेंस इज आर इटर्नल. सिर्फ ये जो शरीर है जिसको आत्मा धारण करता है, जिसके द्वारा वो एक्टिविटीज करता है, वो ईश्वर की व्यवस्था में बनाया हुआ है. देखिए, जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी नहीं बनाता, मिट्टी तो और किसी ने बनाया. मिट्टी ऑलरेडी होता है, वो सिर्फ मिट्टी को यूज करके घड़ा बनाता है. इसी तरह ईश्वर कुम्हार है संसार का, पर संसार को बनाने के लिए वो नए एलिमेंट्स नहीं बनाता. एलिमेंट्स आर देयर, दे आर ऑल्सो इटर्नल्स. वो एलिमेंट्स से वो संसार को अपने सिस्टम से बनता है. द बॉडी एंड बॉडीली ऑर्गेन्स आर मेड बाय गॉड बट दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ आत्मा. ईश्वर शरीर को बनाता है, पर शरीर किसके कंट्रोल में है जी? आपके कंट्रोल में है ना. आप कहोगे मैं शुक्रवार को उपवास रखूंगा, मंगलवार को उपवास रखूंगा, हनुमान व्रत है. शुक्रवार को उपवास रखूंगा, संतोषिमा व्रत है. गुरुवार को उपवास रखूंगा, लक्ष्मी व्रत है. चार साल के बाद आप बीमार पड़ते हैं, दुनिया भर की बीमारी लेकर के पैदा होते हैं, फिर आप कहते हैं भगवान ने ये सब किया है. तो आपके शरीर को किसने तड़पाया? भगवान ने थोड़ा ही तड़पाया, वो तो आप ही हो. और अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण, ब्लाइंड फेथ एंड मीन सेल्फिशनेस के कारण आप इस सब बंदा करते हो, अपने शरीर को टॉर्चर करते हो. कोई नहीं आपको रोकने वाला, बिकॉज इट्स योर बॉडी एंड यू आर मिसयूजिंग इट. फिर जब आप बीमार होते हैं, भारत में मोर देन 60% जो लेडीज हैं, गरीब घर के या मिडिल क्लास के, इवन हायर फैमिली के भी, उनको माइग्रेन से लेकर के दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होता है. क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर महिलाएं ये उपवास और 50 तरह के उपवास करते रहते पुरुषों के लिए. अरे पुरुष खा पी करके तंदुरुस्त बनते हैं. जिनको ज्यादा उम्र चाहिए वो एक दिन उपवास नहीं करते हैं जी. सारे शास्त्र इन्होंने लिखा है, हमने लिखा, मतलब मैं इसी साइड में हूं. तो सारे रूल्स फॉलो करना है इनको. 50 के लंबी उम्र के लिए स्त्री को उपवास रखना है, पति ईश्वर ने तो नहीं बनाया ये रूल, ये आपने बनाया, आपके सोकल्ड पंडितों ने बनाया, आपके सोकल्ड आचार्यों ने बनाया। वो आचार्य पंडित लोग सारे पुरुष थे जी, दो चार महिला होते तो जरूर लिखते जी, पत्नी की लंबी उम्र के लिए पति को हफ्ते में 3 दिन उपवास रखना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में कोई स्त्री में कोई धर्मशास्त्र लिखा नहीं है, और उसका रिजल्ट है कि स्त्रियों को भोगना पड़ता है इन द नेम ऑफ रिलीजन, सारे उपवास व्रत सब इन्हीं को करना पड़ता है। आजकल अच्छे पुरुष काफी आने लगे हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं, और वो शाबाशी के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं अगर ऐसा करते हैं। बाकी चीजें हम कल चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप जरूर अगले संडे भी आइए। ये बहुत चीजें ऐसी हैं कि आपके काफी सारे परसेप्शन के बारे में आप माने ना माने, कम से कम दोबारा सोचने के लिए आपको थोड़ा मौका मिलेगा। जिस तरह के हमारे पास परसेप्शंस हैं उनको जब आप इन चीजों को सुनते हैं स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाशन विचारों को, तो आपको एक नई दृष्टिकोण मिलेगा, आप दोबारा सोचने के लिए मजबूर होंगे, अपनी चीजों को रिव्यू करने के लिए मौका मिलेगा। तो जरूर इनको ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लाइफ में थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट करिएगा। कोई प्रश्न हो तो जरूर आप मुझे अकेले में पूछ सकते हैं, यहां भी पूछ सकते हैं, लिख करके दे सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।